मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, स्व की खोज करते हुए आज हम लोगों का तीसरा दिन हो रहा है। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को जाने। इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मेरे मन में जो एक भय सा है या यूं कह लीजिए कि थोड़ी आशंका सी है, उसे आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों, जब हम ये बात करते हैं कि हम स्व को जाने, कैसे हम अपनी खोज करें, तो हमारी ये जो खोज है ना, ये सीधे सीधे आत्मा की खोज पे पहुंच जाती है, या यूं कह लीजिए कि ब्रह्म की खोज पर पहुंच जाती है। और हमारा जो प्राचीनतम दर्शन है वो खासकर इसी ओर इंगित करता हुआ हमें जान पड़ता है, जबकि सच बात ये नहीं है। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उपनिषदों में जो स्व की खोज की बात कही गई है वो अलग तरीके की है। हाँ, जब आप पुराणों का अध्ययन करेंगे तो उसमें डेफिनेटली फिर स्व के रूप में ये कहा जाता है कि नहीं, आप आत्मा है। जब वो कहते हैं कि आप आत्मा है, तो उनकी आत्मा और उपनिषद की आत्मा के अर्थ में फर्क हो जाता है। जब उपनिषद आत्मा की बात करती है तो उसका अर्थ होता है चेतना से, कॉन्सेंस से। अब जब पुराण आत्मा की बात करते हैं तो उस आत्मा को हम लेकर के चलते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह शुद्ध है, वह कभी मरती नहीं है। इस तरह की बातें हमारे सामने उभर कर आती है। इसीलिए जब हम स्व की खोज करने निकलते हैं तो परिणाम ये होता है कि हम एक ऐसी तत्व की खोज कर रहे होते हैं जो हमारी पकड़ में आसानी से नहीं आता। मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ जो बड़े बड़े योगी हुए हैं, महायोगी हुए हैं, महाज्ञानी हुए हैं। उन्हें हो सकता है कि आत्म तत्व का अनुभव हुआ हो और डेफिनेटली कुछ इस तरह की बातें होती भी होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने समय में जिस तरह की बातें बताई है, खोज किए हैं, दर्शन दिए हैं, वो अपने आप में हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं कि ऐसा इन्होंने किया कैसे। तो वो एक पराचेतना की बात होती है, हम उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ही सामान्य स्तर की बातें कर रहे हैं, जिंदगी की बातें कर रहे हैं, व्यावहारिक स्तर की बातें कर रहे हैं। इसलिए प्लीज आप मेरी बातों को इसी रूप में अगर लेकर के चलेंगे तो शायद खुद के साथ भी न्याय कर सकेंगे और डेफिनेटली मेरे साथ भी न्याय कर सकेंगे। दोस्तों, गीता के आधार पर मैं अब आपसे बात करने जा रहा हूँ कि गीता का जो 14वां अध्याय है वो पूरी तरह से स्व के बारे में ही है। स्व के बारे में कहने का मतलब है कि तीन तरह के स्व होते हैं, गीता में उन्हें गुण कहा गया है। और ये जो तीन तरह के जो गुण हैं, ये प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुण है। और गीता में कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि प्रकृति के ये तीन गुणों से कोई भी परे नहीं है, यहाँ तक कि देवता भी इससे परे नहीं है, ये तीन गुण। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम इन तीन गुणों के बारे में जान लें तो शायद हम अपने को ज्यादा अच्छे से जान सकेंगे। अदरवाइज तो देखिए, गुणों की तो पता नहीं कितनी संख्याएं हैं, कितनी तरह की प्रवृत्तियां हैं, कितने तरह के भाव हैं, कितने तरह के विचार हैं, कितनी तरह की चेष्टाएं हैं, उनका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन ये जो तीन गुण हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी इस बारे में बहुत मदद कर सकते हैं कि मैं अपने आप को समझ सकूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तीन गुणों की चर्चा शुरू करूं, एक बात आपसे बताना चाहूंगा। गीता इस मायने में अद्भुत ग्रंथ है। जब मैं इन तीनों की चर्चा करूंगा तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि अरे यह गुण महत्वपूर्ण है, यह बेकार है, यह पापी गुण है, यह बड़ा धार्मिक गुण है, इस गुण की वजह से हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, इस गुण की वजह से हम नरक में पहुंच जाएंगे। नहीं, गुण ही है ना, खत्म हो गई बात, वो गुण है बस। यानी कि तीन प्रकार है, अब उस प्रकार में कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये वहां नहीं बताया गया है। लेकिन उसमें उन्होंने ये जरूर बताया है लक्षण के रूप में कृष्ण ने कि देखिए, इस गुण का कोई व्यक्ति होगा तो वो ये पसंद करेगा, इस तरह के काम करेगा, उसकी इस तरह की प्रवृत्तियां होंगी, और इस तरह का जो गुण वाला होगा वो इस तरह के काम करेगा। फिर उन्होंने ये नहीं कहा है कि नहीं, इस तरह के गुण वाले को स्वर्ग मिलेगा, इस तरह का जिसका गुण होगा वो नर्क में ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है, आप जानते हैं कि गीता कर्म की बात करती है। मेरे अंदर गुण है तो सीधी सी बात है कि उस गुण के अनुकूल मैं कर्म करूंगा, और जिस तरह के मैं कर्म करूंगा मुझे इसी जन्म में उसके परिणाम मिल जाएंगे। मैं अगर किसी को गाली दूंगा तो कोई आकर के मेरी तारीफ तो नहीं करेगा, बदले में मुझे गाली दे देगा। मैं किसी की तरफ पत्थर उछालूंगा तो वो भी मेरी तरफ पत्थर उछालेगा। यदि मैं किसी से प्यार से बात करूंगा तो अगर वो मेरे ऊपर गुस्सा होना चाह भी रहा हो तो गुस्सा नहीं होगा, वो भी मुझसे प्यार से बात करेगा। बस ये है गुण। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये जो तीनों गुण होते हैं ये सब में होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में एक ही गुण होता है, तीनों गुण सभी में होते हैं, इस धरती पर जितने भी हैं सब में ये तीनों गुण होते हैं, फर्क केवल अनुपात का होता है। किसी में कोई गुण अधिक होता है, किसी में कोई गुण कम होता है। और इसके साथ ही एक बात और है कि एक ही व्यक्ति के अंदर किसी समय विशेष में कोई गुण प्रबल हो जाता है, कोई गुण जरा कमजोर पड़ जाता है, और ये तीनों गुण आपस में मिल करके इस तरह से खेल खेलते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं जानबूझ करके आप लोगों के सामने अभी गुणों का नाम नहीं ले रहा हूँ, अच्छा होगा। थोड़ी देर आप परेशान होते रहिए, कल हम लोग इस पर आगे फिर बात करेंगे। अब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।